इंशाल्लाह ताला हम इन आयात को करके फिर पीछे वाली आयात को साथ लेंगे ताकि इस पूरे मौजू को हम कुरान पाक की तरतीब के मुताबिक समझ सकें। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये अहकामात रखे, अगर हम इनको उसी तरह से लेंगे तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए आयत नंबर 282। आयत को शुरू करने से पहले कुछ बातें इस आयत के बारे में। पहली बात यह है कि ये कुरान पाक की तवील तरीन आयत है। तवील का मतलब क्या है? सबसे लंबी। बस लोग आयतुल कुर्सी के बारे में ये सोचते हैं कि ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है, तो अजीम होना कोई ज़रूरी नहीं होता कि अल्फाज के एतबार से हो, लेकिन अल्फाज के एतबार से, तवालत के एतबार से ये आयत कुरान पाक की सबसे तवील आयत है। दूसरी बात यह है कि इस आयत को आयते दैन भी कहते हैं। दैन जो इसी आयत में लफ्ज़ कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तदायन तुम और बीदैन की सूरत में, या फिर इसको आयते मुदायना भी कहते हैं। दोनों ही ठीक है, आपने अगर दैन लिख लिया तो भी ठीक है, उसी की दूसरी शक्ल है मुदायना, आपस में एक दूसरे के साथ मामला करने के मानों में। और इस आयत का बुनियादी टॉपिक जो है कर्ज उधार के मामलात कैसे हों और गवाही का मामला कैसे हो, और ख़ास तौर पे आप ये कह सकते हैं कि कारोबारी मामलात को कैसे डील किया जाए, वो इस आयत की रोशनी में हम देखेंगे। अंदाज़ वही होगा कि पहले हम खुलासे के तौर पे पूरी आयत को उसके अल्फाज के अंदर अंदर रहते हुए करेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह कर्ज़ के मौजू पे हम सैर हासिल बात करेंगे ताकि इस मौजू को हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझ सकें। तो चलिए आयत के साथ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, पुकार है ईमान के साथ। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम इस वक्त इस आयत को सुनते हुए ईमान के दावेदार तो हैं, और अल्लाह ताला हमें अमल वाला मोमिन भी बना दे। और ऐसी आयतें इस बात की भी दलील हैं कि अल्लाह ताला को ईमान वालों से मोहब्बत है, तभी तो उनको ज़िंदगी गुजारने के सारे मामलात सिखाता है। क्या कहा इधर? इज़ा तदायन तुम, जब तुम आपस में मामला करो। तदायन तुम के लफ्ज़ के अंदर जो लफ्ज़ छुपा है वो इससे आगे वाला ही लफ्ज़ है, बीदैन, दैन का लफ्ज़। दाल या नून से है, दाना या दीनू से दैन का लफ्ज़ बनता है। ये वही लफ्ज़ है जो आप मालिक यौम दीन में पढ़ चुके। अरबी ज़ुबान का हुसन देखिए कि अल्फाज वही होते हैं, ज़बर ज़ेर के फ़र्क से लफ्ज़ बिल्कुल बदल जाते हैं। तो दैन कहते हैं कर्ज को। कौन सा कर्ज? जिसमें मुद्दत का तायुन किया जाए। लफ्ज़ कर्ज भी अरबी ज़ुबान का ही लफ्ज़ है, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क होता है जो इंशाल्लाह हम जब कर्ज़ लफ्ज़ पे बात करेंगे तो फिर वहाँ करेंगे। तो यहाँ बात है दैन की। दैन और कर्ज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क क्या है कि दैन के अंदर मुद्दत का तायुन होता है और कर्ज़ थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है। बहरहाल मुराद क्या है कि जब तुम आपस में उधार के मामले करो, इज़ा तदायन तुम बिदैनिन, जब आपस में उधार के मामले करो, मतलब क्या है कि कोई किसी को उधार रकम दे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कारोबार उधार पे है, और जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये आयत कारोबारी तरीके कार को वाज़े करती है, तो यहाँ आप आम कर्ज़ की बात से ज़्यादा कारोबार के कर्ज़ों की बात करेंगे। और जो लोग भी किसी भी तिजारत या कारोबार से मुंसलिक है वो जानते हैं कि तिजारत में किसी न किसी दर्जे पे उधार होता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें ले ली जाती हैं बेचने के बाद कीमत दी जाती है, बाज़ दफ़ा कंसाइनमेंट बेस होता है कि चीज़ें ले ली, बिकती जाएंगी तो पैसे दे दिए जाएंगे, ना बिकी तो वापस हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा जब अच्छी रेपुटेशन हो जाती है तो ऑर्डर कर दिया जाता है और वो उस चीज़ को निकाल देते हैं, और बाद में आप अपनी सहूलत से उसके पैसे भेजते हैं। ये मुख्तलिफ किस्में हैं तो तदायंतुम में ये सारी ही बातें आएंगी कि किसी किस्म का भी मामला हो, तुमने फोन पे ऑर्डर दिया कि मुझे फलां चीजें भेज दें, उन्होंने भेज दी, इंटरनेट पे दिया या जुबानी कलामी किया, हर मामले में जब तुम भी कभी उधार के मामले करो, क्योंकि यहाँ मामले का लफ्ज है, सिर्फ उधार की बात नहीं है, मामला हो रहा है और उधार का हो रहा है, तो क्या करो? ये नहीं कहा कि ना करो, बस ये कह के कि इजा तदायन तुम भी दैन, इतने से लफ्ज में एक बात निकल आई अमल की कि उधार का मामला जायज है इस आयत की रोशनी में। ये नहीं कहा ना करो, बल्कि कहा जब करो तो कुछ शराइत रखो, कुछ पाबंदियां हैं उसको फॉलो करो। क्या? नंबर एक, इला अजल मुसम्मा, इसके ऊपर आप छोटा सा वन या ए लिख ले, ये है पहली शर्त के मुद्दत का तयन करो, कब होगी, कहाँ दी जाएगी और वापसी कब होगी। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि जब लेन देन में मुद्दत का तयन नहीं किया जाता तो बाद में खराबी होती है, और ख़ास तौर पे जब ये लेन देन रिश्तेदारी की बुनियाद पे हो, दोस्तों के बीच में हो, तो उस वक़्त ये सोच लिया जाता है कि हम अगर इस वक्त ये बात करेंगे, अच्छा भी ये पैसे कब दोगे, अच्छा अगर उधार लिया है तो वापस कब करोगे, तो इससे तो रिश्तेदारी पे हर्फ आएगा और लोग बुरा मानेंगे। तो याद रखिए कि कोई बुरा मानता है तो मान ले, लेकिन ये बुरा मानना उस बुरा मानने से बहुत कम होगा जो बाद में ना लिखने की सूरत में वो मानेंगे, क्योंकि आप कुछ और सोच रहे होते हैं, लेने वाला कुछ और सोच रहा है, देने वाला कुछ और सोच रहा है, बाद में फिर गड़बड़ शुरू होती है। लेने वाला सोच रहा है कि अच्छा दे दूंगा ना जब भी होगा, और जो दे रहा है वो सोच रहा है कि नहीं ये 15 दिन के बाद दे देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इला अजले मुसम्मा, मुद्दत का तयन कर लो। क्या है मुद्दत का तयन? कि वापसी कब होगी, नंबर एक। किस तरह होगी? यकमुश्त होगी, यानी पूरे की पूरी रकम इकट्ठी वापस की जाएगी, या इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में होगी। ये सारी बारीकियां लिख लिया करो, इन सारी बातों का तذکرہ कर लो, बात को खोल लो। अजल मुद्दत को कहते हैं, मुसम्मा मुकर्रर के मानों में है, इसको मुकर्रर मुद्दत तक के लिए रखो, और फक्तुबू ये है दूसरी शर्त, इसको लिख भी लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो, इन राइटिंग ले लो, इसको तुम एक मुआहदे की शक्ल दे दो। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ कानूनी मामलात होते हैं, इनको मुआहदात कहा जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया। आप कहेंगे ये कहने की बात है, अब तो सारे ही करते हैं या ऐसा होता है मोस्टली, तो याद रखिए कि ये कुरान पाक की आयतें उस दौर में नाजिल होती थी कि जिस वक्त लिखने पढ़ने का बहुत रिवाज नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन या अकाउंट्स को मेंटेन करना या फिर मुआहदात को लिखना पढ़ना, इसकी बुनियाद अल्लाह ताला ने इन आयतों के जरिए डाल दी। सबसे पहले कुरान पाक ने ही इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई, कि जिसके बाद आज एक पूरा सब्जेक्ट अकाउंटिंग के नाम पे बन चुका है, और बल्कि इकोनॉमिक्स के नाम पे तो पूरी डीलिंग सिखाई जाती है। तो ये भी एक इल्हामी बात है कि अल्लाह ताला ने उस वक्त ये बात कही जब ना पढ़ने लिखने का रिवाज था और लोग किसी बात को भी इस तरह से नहीं लिखते थे। यहाँ तक बात कह दी गई, दो शरायत, नंबर एक मुद्दत का तयन हो, वापसी कब होगी, और दूसरी बात है कि लिखो। मुद्दत के तायुन के बगैर अगर कोई माली मामला किया जाता है तो एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई कर्ज देते हुए या कोई माली मामला करते हुए लिखवाता नहीं है और अगर उसका माल ज़ाया हो जाता है तो इसे इस पर कोई अजर नहीं मिलता, और अगर वो मकरूज के हक में बददुआ करता है तो अल्लाह ताला इसकी फरियाद नहीं सुनता। क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह ताला के एक हुक्म की नाफरमानी की। ज़िंदगी में इंसान के साथ बहुत सारे मामलात आते हैं, कभी लेना पड़ता है कभी देना पड़ता है, और पिछली आयतों के साथ अगर हम मिलाएं तो अब यही एक सूरत रह गई थी जो सूद के बाद है। तरतीब अगर देखें तो शुरू में अल्लाह ताला ने सदका खैरात की रग़बत दिलाई, खूब उसका अजर बताया, बेहतरीन मसरफ है माल का कि इंसान अल्लाह के रास्ते में सदके में सदका दे या अल्लाह की रज़ा के लिए दे। उसके बाद इस माल की बदतरीन सूरत बताई गई सूद की सूरत में। अब सदका कोई लेना नहीं चाहता, अन्ना पे चोट पड़ती है, पसंद नहीं आता ये बात, सूद ले नहीं सकता तो करे क्या, अल्लाह तीसरा दरवाज़ा खोल रहे हैं, कोई बात नहीं उधार ले लो। और उधार जायज है, इस पे हम, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो उधार का दरवाजा खोला लेकिन इसको मशरूत रखा कि बिल्कुल खुली बात नहीं होनी चाहिए, कब होगा कब नहीं होगा लिखो। अब यहाँ फक्त बू का लफ्ज है ना, ये फेले अमर है, अमर कहते हैं हुक्म को कि ये जरूर लिखो, लेकिन यहाँ ये वजूब के मानों में, यानी वाजिब है, फर्ज नहीं है। अगर कोई लिखता नहीं है किसी सूरत में तो फिर गुना नहीं होगा, लेकिन बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसका ज्यादा शुबा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हुक्म इस्तेहबाब के दर्जे पर तो है, वजूब के नहीं। इस्तेहबाब हुब से है, पसंदीदा है, रिकमेंडेड है, बहुत इसकी खूबी है, लेकिन वाजिब नहीं कर दिया, क्योंकि वरना फिर बहुत ज्यादा पेचीदगियाँ होती हैं और फिर हर वक्त हम गुनाहगार होते रहते। तो ये दो बातें हैं। अब करेगा कैसे, ये लिखा कैसे जाएगा, उसका तरीक़ाकार बताया जा रहा है। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम आपस में या तुम्हारे दरमियान। कौन है बैनकुम? लेने वाला और देने वाला। और कुम क्यों आ गया फिर? बैनकुम आ होना चाहिए था भाई, तस्निया ड्यूल का सीगा होना चाहिए था, जबकि यहाँ जमा या प्लूरल का है। तो इसकी वजह ये कि बाज़ दफ़ा मामला सिर्फ दो अफराद का नहीं होता, दो ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, दो कंपनीज का होता है, दो बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं। तो बैनकुम कह के इन सबको भी लिया गया, और मुसलमान या जो भी कोई दूसरा हो सकता है उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है कि वल यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदली, चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल के साथ। यहाँ देखिए कि इशारा कर दिया कि लिखने वाला गैर जानिबदार होना चाहिए, वो कोई कातिब हो। इसको आज के दौर में अर्जी नवीस कहते हैं या वसीका नवीस कहते हैं। अदालतों के बाहर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो स्टैम्प पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करके देते हैं और कुछ उसके पैसे लेते हैं। तो कहा कि बेहतर क्या है कि इसको कोई दूसरा ही लिखे। वला या बकातिबुन, और ना इनकार करे कातिब यानी लिखने वाला। या बक लफ्ज़ वही है जो अबा की सूरत में पीछे गुजर चुका, शैतान के तस्करे में, फ अबा वस्तकबरा। अबा कहते हैं सख्ती से इनकार करना। तो कहा कि अल्लाह ने अगर किसी को लिखना पढ़ना सिखा दिया, चाहे वो प्रोफेशनल है या जस्ट उसके दूसरों में ज़्यादा पढ़ा लिखा वही है, मसलन किसी देहात में ये मामला हो रहा है, लेने वाला भी ना अनपढ़ है, देने वाला भी अनपढ़ है, लेकिन उसी देहात में किसी का बच्चा पढ़ा हुआ है या उसको लिखना पढ़ना आता है, तो वो कातिब बन जाएगा। इसके लिए कोई कातिब की डिग्री लाजमी नहीं। तो लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को लिखना पढ़ना सिखा दिया है, तो उसका फिर हक ये बनता है कि वो उसका हक अदा करे, लेकिन जब कभी उसको बुलाया जाए तो इनकार ना करे। वला या बकातिबुन यकतुबा, किस बात से इनकार ना करे कि लिखे। कमा अल्लमहुल्लाह, जैसा कि सिखाया उसको अल्लाह ने। यह है अल्लाह की नेमतों का हक कि अगर अल्लाह ने किसी को लिखना पढ़ना सिखा दिया और दूसरे को नहीं आता, तो उसको इस पे इनकार नहीं करना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए, या उसको कोई ऐसे रंग में नहीं लेना चाहिए कि जिसकी वजह से ये मामला ही पेंडिंग में चला जाए और बात लटकती जाए। इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला जब किसी को इल्म की नेमत दे तो उसको हत्तुल बसा दूसरों की खिदमत से इनकार नहीं करना चाहिए, जो भी मौका हो उस मौके को फ़ायदा उठाए और दूसरों की मदद कर सके, क्योंकि ये भी अजर की बात होती है। और आपको शायद मालूम होगा कि ये भी सदका है, किसी के पास कोई सलाहियत हो और वो दूसरे को सिखा दे जिसके पास वो सलाहियत नहीं थी, तो सिखाने वाले को सदका देने का अजर मिलेगा। इसको आप बड़े बड़े मामलों से निकाल के छोटे मामलों पे ले आए। आपको कोई खाना पकाना आता है, आप किसी दूसरे को सिखा देते हैं, नियत अच्छी कर लें बस, इंशाल्लाह जब तक वो पकाता रहेगा आपको अजर मिलेगा। किसी को आपने रोटी बनानी सिखाई होगी, सारी जिंदगी की रोटियां आपने उसकी अपने बल्ले में डाल ली, कितना आसान है। किसी को ड्राइविंग सिखा रहे हैं आप, इस्लाम कितना बड़ा सिनेरियो देता है इंसान को नेकी करने का। कुछ भी करो, ये सोच के करो कि पहली दफा किसने कलम पकड़ना सिखाया। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अपने ही बच्चों पे ये नेकी कर सकते हैं। आप उनको बिस्मिल्लाह पढ़नी सिखाएं, लिखनी सिखाएं, और साथ नियत करें कि अल्लाह आज के बाद ये जो लिखेगा उसका अजर मुझे मिलेगा। तो कहा कि ये अल्लाह की नेमत है, उसने उसको सिखाया। फल यक्तुब, पस चाहिए कि लिखे। चले, अब ये तो बात कह दी कौन लिखे, इसका आप खुलासा लिख सकते हैं कौन लिखे। अब दूसरा अगला सवाल है कैसे लिखे, उसका जवाब है वल युमलिल, और चाहिए कि इमला करवाए, डिक्टेट करवाए। कौन? अल्लज़ी अलैहिल हक्कु, वो शख्स जिसके जिम्मे कर्ज है, यानी कर्ज लेने वाला। अब तसव्वुर में लाएं इस मंजर को कि एक लेने वाला, एक देने वाला और तीसरा शख्स जो आके बैठा है वो इनकी मदद कर रहा है। तो अब मामला लिखवाना पड़ेगा ना, तो कौन लिखाएगा? जो कर्ज ले रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि अमूमन कर्ज लेने वाला जो शख्स होता है ना, वो मजबूर होता है, मुफलिस हो सकता है, दुखी हो सकता है, वो ज्यादती नहीं करेगा। इसके बरक्स अगर कर्ज देने वाले को कहा जाए कि तुम लिखाओ, हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा चौधरी हो, कोई बहुत जालिम शख्स हो, लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाने वाला हो, और वो दे रहा है कर्ज में 1,000 और लिखवा दे मैंने 10,000 दिया, एक ही जीरो ज्यादा लगाना है ना, और दूसरे को ना पता चले या वो उससे डर जाए तो दब जाए। तो यहाँ बताया गया कि अल्लाह ताला की जात ने यहाँ किसका हक दिया कि जो दबा हुआ है। और यही है दीन इस्लाम की खूबसूरती कि वो उस तबके को हक दिलवाती है जिनके हक अमूमन मारे जाते हैं। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ जो है ना यमलिल, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने इसके तर्जमे में जान के लफ्ज़ इमला बोला। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ याद आ गया होगा, पहले दौर में जब लोग पढ़ना लिखना सीखते थे तो इमला करवाई जाती थी। तख्तियों पे इमला क्या होता है? डिक्टेट करना, कोई बोलते और आप लिखते हैं। मसलन जैसे अगर आपको यहाँ ट्रांसलेशन लिखवाया जाए, आप सामने कुरान खोल लें और हम बोलें और आप लिखें, तो वही लफ्ज़ है इमला। और ये क्यों इमला है? ये जो लफ्ज़ है ना यमलिल इमला, इसका मतलब क्या होता है? दो मानी होते हैं। एक इसका मतलब होता है बोर होना, और बोरिंग हो जाता है ना। बाज़ आप में से बहुत चाहते हैं, और मुझे पता है कि आपकी तो शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं तफसीर के दौरान ऐसे बोला करूं कि आप एक एक लफ्ज़ लिख लें, है ना ये ख्वाहिश आपकी? अगर मैं वैसे बोलने लगूँ ना तो आप सारे सो जाएं और कोर्स आपका कोई 5 साल पे चला जाए, बोरियत होने लगती है। जब बहुत बात की ना, अच्छा फिर, तो आधे लोग तो वहीं बिल्कुल मस्त हो जाएंगे ना, तो बोरियत होने लगती है और बोझलपन का एहसास होता है। दोनों के लिए बोरियत होती है, जो लिखा रहा होता है उसको भी नींद आ रही होती है कि ये क्या अब ये लिख ही नहीं रहे, इतने सुस्त हैं, और दूसरे जो लिख रहा होता है उसको भी ये बुरा लगता है। तो इसलिए ये लफ्ज़ यहाँ यमलिल इमला से आता है कि ये चीज़ इंसान के ऊपर बोझ पड़ती है। तो इमला में बोरियत भी होती है और बोझलपन भी होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी इमला करवाएं। और इससे भी पता चलता है लिखे हुए को दिखाना क्यों नहीं है, इसमें गलती हो सकती है। जब बंदा बोलता है ना तो उसके कान भी सुनते हैं और उसकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ होते हैं उसकी बाद दफ़ा गवाहियाँ बन जाती हैं। तो बोल के इसको लिखाना चाहिए, कौन बोलेगा? जो कर्ज़ ले रहा है। और लिखवाते हुए क्या करे? वल यत्तकिल्ला, और चाहिए कि अल्लाह से डरे। कौन सा अल्लाह? रब्बहू, जो उसका रब है। ये है कानून की मुनफरिद किताब, हर बोझल और सख्त हुक्म के बाद तकवा की बात, अल्लाह का खौफ, क्योंकि यही है वो एक चीज़ जिसकी वजह से लोग काम सीधे कर सकते हैं। अल्लाह का खौफ जब नहीं होता ना तो बात नहीं बनती। आज नॉन इस्लामिक तालीमात को आप देख लें, लोगों ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना ली, बड़े बड़े इदारे बना लिए, लेकिन लोगों से गलत चीज़ें नहीं छुड़वा सके। कानून बना लेते हैं लेकिन कानून की पासदारी करवाना मुश्किल होता है। वजह क्या है? कि तकवा पे बात नहीं होती। यानी अगर आप में से कोई कुरान पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसका दिल खोल देता है, दिल में भी तकवा है, ईमान भी है, मोहब्बत भी है, फिर मेरी ख्वाहिश है कि आप में से जाए कोई और किसी ऐसी जगह में जाके पढ़ाए जहाँ कोई इस्लामिक चीज़ भी नहीं है। मसलन साइंस का कोई आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं, आप ज्योग्राफी के टीचर होंगे ना, ज़मीन के रकबे सिखा रहे हैं, इधर इतनी, इधर ऐसी ज़मीन सख्त, लेकिन वहाँ आप के दिल में अगर तकवा है ना तो आप अपने स्टूडेंट्स को वो दे के आएंगे कि सोचो ज़मीन कहाँ से आई, किसने बनाई, ये हिलती क्यों नहीं, ये जुलती क्यों नहीं। तकवा के फ़ायदे क्या होते हैं? कि हर चीज़ का रुख जो है वो अल्लाह ताला की तरफ पलट जाता है, हर चीज़ आप उसी तरफ ले जाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि फिर मानने को दिल जाता है। तो कहा कि वल यत्तकिल्लाह रब्बहू वला यबखस मिनहु शैया, और ना कमी करे उसमें कुछ भी, कमी बेशी ना करे। कमी नहीं करने की बात कही तो बेशी की क्यों नहीं की? क्योंकि जो लिखवा कौन रहा है, जो कर्ज ले रहा है, तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने ज्यादा लिया है, समझ रहे? यबखस का लफ्ज उर्दू में तो हम कह रहे हैं कि कमी बेशी ना करे, लेकिन बाखासीन इसका रूट है बखीसा, कमी के मानों में आता है, यानी किसी चीज को कम करना उसके अंदर। ये ना कहे कि ले वो 1,000 है तो लिखा दे कि मैंने 800 लिया, बल्कि पूरे का पूरा लिखा है। अच्छा, अब यहाँ तक एक अलग टॉपिक पूरा हुआ। आप देख रहे हैं कि बीच में तोए आ रहे हैं, और जो आयत जितनी लंबी होती है ना उतने बीच में तोए ज्यादा होते हैं। ये ऐसी है जैसे इंग्लिश की किसी सेंटेंस के बीच में कॉमा होता है, फुल स्टॉप तो होता है कि वो आपका जुमला पूरा हो गया, लेकिन यहाँ तोए की हैसियत क्या होती है कि अब इसके बाद मौजू पलट रहा है। अब अगला मौजू, उससे पहले एक सवाल जहन में कर सकते हैं आप कि उसका टॉपिक क्या है कि जो शख्स कर्ज ले रहा है वो लिखाने के काबिल ही नहीं है। कैसे? फ़ैन कान अल्लज़ी, पस अगर है वो शख्स, अलैहिल हक्कु, जिसके जिम्मे हक है, यानी कर्ज ले रहा है, हक किस बात का कि कर्ज वापस करना है उसको, और उसके जिम्मेदारी उसके सर पे पड़ गई है। कैसा है वो शख्स? सफीहन, बेवकूफ, सफीहा से पीछे गुजर चुका, अहु दईफन, या कमजोर है, कोई भी जोफ हो सकता है। तीसरी चीज, औला यस्ततियु अय्यो मिल्ला, और नहीं इस्तात रखता कि वो इमला करवाए, बोले, यानी गूंगा है, बोल नहीं सकता, बावला है, या बहुत बूढ़ा है, या बहुत बच्चा है, ज़ईफ़ुल अक़ल है, दीवानगी है, समझदारी नहीं। कभी ऐसा मामला है तो फिर क्या करे, फिर कौन करेगा? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि चचा और भतीजे का मामला चल रहा है, भतीजा बहुत छोटा है, भाई फौत हो गया, जो विरसा बटा है वो एक तरफ चचा है और दूसरी तरफ भाई के मुकाबले में, यानी उसका बाप फौत हो गया और अब वो बच्चे को मिल रहा है, तो बच्चा तो नहीं बोलेगा ना, फिर क्या होगा? इस सूरत में फरमाया, फल युमलिल, बस चाहिए कि इमला करवाए, वली युहू, उसका वली, उस बच्चे का, या उस कमज़ोर शख्स का, या उस शख्स का जो बोल नहीं सकता, लेकिन वली भी किस तरह कराएगा? बिल अदली, अदल के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई फख्तुबू की, लिखो, लिखवाओ, मामला कागज़ों में ले आओ। इसके बाद एक और अगली शर्त है। अगर आप देखें तो अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं, अजल मुसम्मा, और दूसरा क्या है, फख्तुबू। अब तीसरी चीज़ आगे आ रही है, क्या? वस्तशहीदू, और गवाह तलब करो। कितने? शहीदैन, दो गवाह। किसमें से? मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से। रिजालिकुम से मुराद है मुसलमान मर्दों में से, यानी जब कभी ऐसे कोई मामले हों तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि गवाह जो हों वो मुसलमान हों। ये तीसरी शर्त है कर्ज के साथ जो लेन देन है। कितने मर्द? दो मर्द। भाई क्यों? एक मर्द क्यों नहीं? आप जरा सोचिए, कोई मामला हो रहा है, अगर एक मर्द को बीच में रख लिया जाए तो भी ठीक है, अल्लाह ने दो मर्द रखे तो इसे क्या जहन में आ रहा है कि एक मर्द की गवाही आधी होगी ना? यानी मैं सिर्फ आपको एक छोटे से मसले की तरफ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि बास लोग इस मसले को बहुत उड़ाते हैं कि औरत की गवाही आधी है। सुना मैं आपने ये मौजू, चूंकि औरत की गवाही आधी है तो अब इनकी नमाजें भी आधी कर दो, इनके रोजे भी आधे कर दो, और ये कर दो, और ऐसे गवाही मांगते हैं जैसे कोई वो बहुत खाने की चीज है, हालांकि वो तो जिम्मेदारी है। लेकिन लफ्जों पे गौर करें तो क्या कहा? वस तशखीदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम, पस गवाही दें दो मर्द तुम में से। तो दो क्यों? इसका अर्थ है कि एक की गवाही आधी है। तो आज तक किसी मर्द को आपने कोई एहतजाज करते देखा? मर्द नहीं एहतजाज करते, वो सोचते भी नहीं। ये औरतों की तबीयत होती है कि ओवर सेंसिटिव होती हैं, बात बात में रूठ जाती हैं, माइंड करने लगती हैं, उनको बस ये बहुत लग रहा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। इसीलिए आपको पता है कि हमारे मुल्कों में मारूफ लोग जो है वो इस मौजू के ऊपर सड़कों पे भी निकल आए, असेंबलीज में भी ये मसला गया कि जी औरत की गवाही आदि क्यों है, औरत को पूरी गवाही दिलाएंगे। हालांकि आगे लफ्ज़ को देखें तो आपको बात सही समझ आएगी कि दो मर्द गवाही देंगे। फाइल लम यकू ना, पस अगर ना हो, यकू ना के आगे जो अलिफ है ना ये तस्निया का होता है, यानी दो मर्द अगर ना मिल सकें, कौन? रजुलैन, दो मर्द, तो फरजुलुन, फिर एक मर्द, और वमरअतान, दूसरे मर्द की जगह दो औरतें। दोबारा बोलूं, किसी भी मामले की गवाही के लिए दो मर्द तलब किए, ठीक है, दो होंगे, किसी सूरत में दो नहीं मिलते, तो एक मर्द तो दूसरे की जगह पे इम्रातान, इस पे लोग झगड़ा करते हैं कि देखें एक गया तो इसकी जगह दो औरतें क्यों आई हैं। हालांकि इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि इंसान इसको इतना बड़ा मसला बना दे। इसी आयत को बुनियाद बना के औरतों को बदगुमान किया जाता है और इस्लाम के खिलाफ किया जाता है और कहा जाता है कि औरतों के हकूक आधे हैं। तो पहली बात है कि क्या गवाही देना हक है या जिम्मेदारी। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत सारी और सहूलतें भी दी हैं जो मर्दों को नहीं दी। मसलन उसको घर में नमाज पढ़ने का हुक्म है, उसको पाबंद नहीं किया गया कि 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज अदा करे। फिर अल्लाह ताला ने पीरियड्स के दिनों में औरतों को नमाजों से माफ़ कर दिया। कभी आज तक किसी मर्द को इस पर एहतजाज करता आपने देखा कि ये औरतें महीने में 5-6 दिन नमाजें नहीं पढ़ती, हमारा भी हक दें। मर्द केयर भी नहीं करते, ये औरतों को ही शुगल होता है कि मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी नन ने ये कह दिया, मेरी भाभी ये कह गई है, यही मसले सोचती रहती हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो एक मर्द की जगह दो औरतें क्यों हैं, इसकी वजह आप समझिएगा। वम्रअतानी मिम्मन तरदौना, उनमें से जिनको तुम पसंद करते हो। किस लिए? जाती को पसंद है? नहीं, मिन शुहदाई, गवाही के लिए, यानी काबिले भरोसा औरत हो। औरतों में से वो औरतें होंगी जो काबिले भरोसा है, जिनके दीन पे तुम्हें यकीन है कि वो गलत बात नहीं कहेंगी। क्यों है दो औरतें? अब इसकी इल्लत या वजह बयान हो रही है कि अंत दिल्ला एहदाहुमा, अगर भूल जाए इन दो में से कोई एक तो फतु जक्किरा एहदाहुमल उखरा, तो याद दिलवा देगी उन एक में से दूसरी। अब इस पे बात करते हैं कि एक मर्द के बदले में जो दो औरतें हैं, तो ये नहीं है कि वो दोनों जाके इकट्ठी एक कोरस की शक्ल में बोलेंगी कि हम ये गवाही देते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी जो है ना वो बैकअप है। बैकअप समझते हैं, जो आपने घर में रखे होते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, कि ये टूट गई तो इसकी जगह फौरन दूसरी निकाल देंगे, बैकअप, उसकी चीज़ को पीछे के लिए रखने के लिए। होगा क्या कि औरत जाएगी अदालत में, गवाही देगी, किसी मौके पे औरत भूल सकती है या उसको कोई गलती लग सकती है, इस सूरत में दूसरी औरत याद दिलाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के बारे में आता है कि एक मौका ऐसा था कि किसी मौके पे उनको दूसरी औरत के साथ गवाही देने के लिए अदालत में जाना पड़ा। जब वहाँ गईं तो जो दूसरी थी उन्होंने गवाही दे दी, तो इनका जब मौका आया तो ये खामोश थी, बोली नहीं। तो इन लोगों ने इनको कहा कि आप क्यों नहीं गवाही दे रही? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि ये पहली भूली नहीं है और अल्लाह ने कहा है कि दूसरी कब गवाही देगी, कि अंत दिल एहदाहुमा फतुज़क्की एहदाहुमल उखरा। बात समझे? यानी कि वो दूसरी भूलेगी तो फिर पहली देगी, तो ये तो भूली नहीं, इसने जो बात कह दी है वही ठीक बात है, तो मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं है। बात का मतलब क्या है कि औरत को दूसरी औरत की जगह पे बैकअप के तौर पे रखा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, तो क्या मर्द नहीं भूल सकते? तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो आज साइंस ने भी ये चीज़ साबित कर दी और मुशाहिदा भी इस बात का गवाह है। और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने औरत के अंदर भूल का मादा मर्द के मादे से ज़्यादा रखा। औरत के जो कुछ दिन गुजरते हैं ना बीमारी में, हर मंथ, ये इसका मेमोरी लॉस करते हैं, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। फिर मीनोपॉज को देख लीजिए, जब पीरियड्स ख़त्म होने होते हैं, आप अमूमन देखें कि उन दिनों में औरतें इस तरह से परेशान हो चुकी होती हैं। फिर इसके बाद प्रेगनेंसी, हमल के अंदर लोगों ने प्रेग्नेंट औरत के जब माइंड को टेस्ट किया जाके इस माइक्रोस्कोप्स में, तो जो फ्लूइड या वो मादा जो मेमोरी को रखता है ना अपने अंदर, वो कम हो गया होता, वो कमज़ोर हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि औरतों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। मुझे बहुत ही एक पसंद आया किसी का ईमेल, किसी मौके पे आपको भी दिखाएंगे, कि औरत का माइंड जो होता है ना उसमें और मर्द के माइंड में क्या फ़र्क है। औरत के जहन में एक वक्त में कितनी मशीनें चल रही होती हैं, तो उसको किसी ने कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में पेश किया है कि एक औरत एक वक्त में इतनी मुख्तलिफ चीज़ें सोच रही होती है, तो उन्होंने हर सोच को एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो वो एक ऐसी पिक्चर है जैसे कभी आपने कंप्यूटर खोला हो तो उसके अंदर पुर्जे लगे होते हैं ना, तो उसमें नीले नीले डॉट्स भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई खेल रहा है, यूं यूं बस पूरी स्क्रीन हो रही है। और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक औरत के माइंड की एक कंप्यूटराइज पिक्चर है कि हर वक्त उसके जहन में ये इतना कुछ हो रहा होता है। और इसके बरक्स एक मर्द का माइंड कैसा होता है कि उसमें सिर्फ दो ब्लू बॉल्स होंगे। आप देखिए कि आपको दिन में या हफ्ते में कितनी दफा अपने शौहरों से इस बात पर डांट पड़ती है कि एक एक करके बताओ। पड़ती है। हकीकत है कि मर्द सिर्फ सीधा चलते हैं और औरतें बहुत तरफ जाती हैं, और जो जितने मुख्तलिफ कामों में होगा ना उतना भूलेगा। आप कई दफा चूल्हे पे दूध रख के भूल जाती हैं और जाके अंदर कपड़े इस्त्री करने लग जाती होंगी, और फोन आ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या कुछ होता होगा। तो औरत के अंदर एक वजह तो ये है, एक दूसरी भी वजह है कि औरत के अंदर जो भूल रखी है ना, ये अल्लाह की बहुत रहमत है। अगर मर्द की डांट औरत भूले ना तो रात को खाना ना पके। ये अल्लाह की रहमत है कि वो दिल पे लाती है, और उस वक्त तो पल्ले से बांध लेती है कि आज के बाद बस मैंने इनसे ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़ी देर बाद भूल जाती है। ये भूल का मादा अल्लाह की रहमत है कि वो अपने दिल पे बोझ नहीं रखती बल्कि उसको अलग कर देती है अपने से। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि औरत अगर भूल जाएगी तो उसको दूसरी याद करा देगी। तो लिहाजा इसको बुनियाद बना के ये कह देना कि औरत को गवाही में दूसरा क्यों रखा, ये तो बल्कि जिम्मेदारी है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे 20 किलो का डिब्बा किसी ने उठाना है और कहा जाए कि एक मर्द अकेला उठाए 20 किलो, और साथ कह दिया जाए अच्छा औरतें चलो ऐसा करो दो औरतें मिल के 20 किलो उठा लो, 10-10 कर दो, तो कौन फायदे में। आपको पता है कि गवाही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी बात नहीं। बाज दफा अदालतों में जाना पड़ता है, फिर वहां मुजरिम सामने खड़े हैं, औरतों ने तो अगर गवाही दी ऐन वक्त पे जाके रहम आ गया, उन्होंने अपनी गवाही बदल लेनी और वो खुद मुजरिम बन जाएंगी। हाँ, इसके बरक्स कुछ मौके ऐसे हैं कि औरत की गवाही मर्द के बराबर है, और कुछ मौके ऐसे हैं कि औरत की गवाही ही सिर्फ ली जाती है, मर्द की नहीं ली जाती। मसलन लियान सूरत नूर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शौहर बीवी के जो मामले में एक मामला आता है, दोनों में से एक जो एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम दे रहा होता है कि मैंने इसको बुराई करते हुए देखा है, तो उस सूरत में मर्द और औरत की गवाही बराबर है। फिर इसी तरह बच्चे की रज़ात, किस बच्चे ने किस औरत का दूध पिया है या कौन सा बच्चा किसका है, उसमें मर्दों की गवाही ली ही नहीं जाती। तो लिहाजा ये मौजू कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कि जिस पे हम ज़्यादा बात करें और लोगों को तरक्की के नाम पे यही सिखाएं कि औरतें इस्लाम के ख़िलाफ़ ही बातें करती रहें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि औरत को ज़िम्मेदारी से आज़ाद कर दिया गया कि वो ऐसी मुश्किल में ना पड़े, और ऐसे मामले में औरत के साथ दूसरी औरत जो है उसकी मदद के लिए आ जाए। यहाँ पे औरतों की और गवाही की बात पूरी हुई।